मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 22 अगस्त 2016 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं आप सभी अपने प्यारे दोस्तों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 7 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अगले साल फरवरी मार्च में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं तरुण अग्रवाल आगरा उत्तर प्रदेश से, अमरेंद्र कुमार मिश्र गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, मधु कुमार औरंगाबाद बिहार से, नूर आलम अंसारी जीरा देवी बिहार से, रमाकांत रघुवंशी भोपाल से, जयकांत चौधरी कटक उड़ीसा से और चित्रा वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से। तो तरुण, अमरेंद्र, मधु, नूर, रमाकांत, जयकांत और चित्रा, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इससे पहले कि मैं AIR न्यूज केस की समीक्षा बनाऊं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है और यह सूचना उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फिफ्थ बैच के स्टूडेंट बनकर अभी सितंबर में क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भोपाल आने वाले हैं। मित्रों, आप लोगों में से जिन लोगों ने अपनी पूरी फीस जमा कर दी है उनके लिए सूचना है कि आपका एडमिशन फॉर्म .com पर डाल दिया गया है, नेट पर डाल दिया गया है। प्लीज आप वहां जाएं, afeis.com पर जाएं, वहां आपको बहुत स्पष्ट रूप से फॉर्म का कॉलम मिलेगा, क्लिक करें, आपको फॉर्म मिल जाएगा और उसे बहुत ध्यान से पढ़कर और भर दें, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसे सबमिट कर दें। जहां तक फॉर्म को भरने का सवाल है, सारे इंस्ट्रक्शंस अलग से दिए हुए हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि फॉर्म को भरने के लिए और कुछ जानने के लिए कॉल न करें, क्योंकि कॉल करने की उसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी, अलग से पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो प्लीज एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि जो आपका एडमिशन फॉर्म है वो अवेलेबल करा दिया गया है नेट पर, प्लीज उसे देखें और जल्दी से जल्दी भरकर भेज दें। तो मित्रों, इस सूचना के बाद अब हम लोग आते हैं कल की AIR न्यूज पर। दोस्तों, न्यूज में 3-4 तो छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हम लोग उसमें से एक बात, एक टॉपिक को ही लेकर के आज थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे जो रियो ओलंपिक पर है। पहली खबर आपने सुनी जो कश्मीर के बारे में थी, और खासकर कश्मीर पर जो भारत ने अब अपना एक स्टैंड लिया है पाकिस्तान के साथ, सच पूछे तो उसकी काफी तारीफ हो रही है, क्योंकि भारत पहले यही बात कहता था कि ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन अब वो स्टैंड चेंज हो गया कि नहीं, कश्मीर के बारे में कोई बातचीत नहीं होगी। हाँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, POK भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है उसके बारे में बात की जा सकती है, या फिर जो एक स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है, जो पाक के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है जो भारत के लिए खासकर वो कर रहा है, उस पर बातचीत की जा सकती है कि कैसे इसे कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज कश्मीर पर अब कोई भी बातचीत नहीं होगी। ये भारत का बहुत ही एक फर्म स्टैंड है, और सच पूछे तो लोगों को अब उम्मीद है कि शायद अब भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक मोड़ आए। ये सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सच पूछे तो उम्मीद सकारात्मकता की ज्यादा है, क्योंकि अब जो इंटरनेशनल लेवल पर भी अब पाकिस्तान को थोड़ा सा जवाब देना मुश्किल होगा, खासकर आतंकवादी गतिविधियों के मामले में, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि कश्मीर में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, भारत ऐसा कर रहा है जो अक्सर जैसे उसको मौका मिलता है UNO वगैरह के फोरम पर वो उठा देता है, तो अब भारत ने भी कहा है कि आप बलूचिस्तान को देखिए, वहां क्या हो रहा है, वहां आप क्या कर रहे हैं, तो ये एक आप कह लीजिए कि उसी की गोट से मात देने जैसी स्थिति है तो मित्रों, खासकर आपको ये जो मोड है, जो भारत ने जो एक स्टैंड लिया है, अभी आपको इस बात पर विशेष ध्यान रखना होगा, इस पर अपनी निगाह रखिए और देखिए कि अब इसकी वजह से पाकिस्तान के एटीट्यूड में किस तरह का परिवर्तन आता है और भारत को किस तरह से इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, हम इसको अब इस रूप में देखेंगे। दूसरी जो खबर थी दोस्तों, वो ये कि सीरिया की स्थिति, आपको मालूम है कि बहुत बुरी स्थिति में सीरिया है, खासकर आईएस के चक्कर में वो पड़ा हुआ है और एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति बुरी तरह से है, जहां अमेरिका और रशिया भी अपने अपने तरीके से आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अब सीरिया ने भारत से मदद मांगी है, अब ये छोटी सी बात लग रही है कि सीरिया के द्वारा भारत से मदद मांगा जाना, अब ये इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली ये कितना क्या रूप लेता है, कितना सही है, इसके बारे में हम लोग तब बातें करेंगे जब हमारे सामने कुछ और चीजें स्पष्ट होंगी। डेफिनेट पक्का मानिए कि इस पर एडिटोरियल कमेंट भी आएंगे, लेख भी आएंगे, और वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि भारत क्या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन मुझे एक बात लगती है मित्रों कि सीरिया के द्वारा भारत से इस बारे में मदद मांगा जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि जो दुनिया के देश हैं वो भारत को कहीं न कहीं एक बहुत ही संतुलित, शांतिप्रिय, एक मददगार वाले राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि के लिए एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। मित्रों, जो तीसरी जो सबसे बड़ी खबर मैं कहना चाहूंगा सिविल सर्विस के पॉइंट से, वो है रियो ओलंपिक को लेकर। आपको मालूम है कि रियो ओलंपिक खत्म हो गया, समाप्त हो गया है, भारत दो पदक लेकर आ सका, जिसमें एक पदक हमारी साक्षी मलिक ने जो ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में हासिल किया, और दूसरा पदक जो सिंधु हैं, पीवी सिंधु, उन्होंने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल हासिल किया। हालांकि हमारी टीम बहुत बड़ी गई थी, अब तक की सबसे बड़ी टीम गई थी, और जो भारत ने उम्मीद भी की थी, लगभग मान के चल रहा था भारत की हम इस बार 10 पदक टोटल लेकर के आएंगे, उसका कारण यह था कि पिछली बार भारत ने जो लंदन ओलंपिक हुआ था उसमें 6 पदक हासिल किए थे, लेकिन इस बार जो सीमा रही वो 2 पदक पे सिमट कर रह गई। तो दोस्तों, अब इसको लेकर के एक एनालिसिस होगी, और आपने देखा है कि इससे पहले भी इसको लेकर के चीजें आनी शुरू हो गई हैं खेल जगत को लेकर के, और न्यूज में आपने ये भी सुना कि जो पब्लिक स्पीक का विषय है वो भी खेलों से ही संबंधित है, कि भारत में कैसे खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसी को लेकर के पब्लिक स्पीक का टॉपिक भी रखा गया है। इससे पहले भी मैंने आपको कई प्रेस क्लिपिंग्स इस तरह की प्रोवाइड की हैं, खासकर खेलों को लेकर। मित्रों, यहां मैं एक बात आप लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि रियो ओलंपिक तो एक माध्यम है, एक संदर्भ है कि हमारा किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, दोनों तरह की चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। कुछ इस बात को लेकर के खुश हैं कि भारत ने इतने सारे खेलों में कम से कम क्वालिफाई तो किया, आपको मालूम है कि पाकिस्तान का तो एक भी खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो हम क्वालिफाई हमने किया, भले ही वहां हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्वालिफाई करना एक बड़ी बात है, मतलब हमारे खिलाड़ियों को उस स्तर का समझा गया। भारत बहुत से नए खेलों में भी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, तो इस तरह से थोड़ी सी सुकून वाली बातें भी की जा रही हैं। फिर आप आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि जो आपको पढ़ने को मिले हैं और आगे भी शायद पढ़ने को मिलेंगे कि भारत में ये हालत क्यों इतनी बुरी है, खर्च बहुत कम किया जाता है, राजनीतिक दबाव पड़ते हैं, इस तरह की ढेर सारी चीजें आपको रूटीन की पढ़ने को मिलेंगी। नो डाउट कि आप इन सब चीजों को बिल्कुल पढ़ेंगे और ध्यान भी रखेंगे। मैं अब आपको सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें सजेस्ट करना चाहूंगा। मित्रों, जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि अब हम देखते हैं कि सिविल सर्विस का जो अब पैटर्न हो गया है, उसको देखते हुए जो रियो ओलंपिक हुए हैं वहां से हम अपने एग्जाम के लिए क्या निकाल सकते हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि 2013 मेंस से एक नया पैटर्न आया है, मेंस की बात मैं कह रहा हूं, प्री तो उससे पहले ही आ गया है, मैं प्री की बात नहीं कर रहा हूं। प्री में तो देखिए किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत से क्वेश्चंस बनते भी हैं, भारत किस स्थान पर रहा, टॉप पर कौन रहा, सेकेंड पोजिशन पर कौन रहा, किन किन खेलों में मेडल मिला, इस तरह की बातें पूछी जा सकती हैं, कौन से खिलाड़ी किन खेलों से संबंधित रहे, तो प्री की तो सीमा बहुत व्यापक होती है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मेंस के बारे में। तो 2013 के बाद से मित्रों जो हमारे पास जो अनसॉल्व्ड पेपर हैं उसमें एक हमारे पास निबंध का विषय है, और निबंध में एक बहुत अद्भुत चीज पूछी गई थी, शायद 2014 में निबंध ये पूछा गया था, और वो था कि, या 2014 में शायद पूछा गया था, निबंध था कि ओलंपिक में 50 मेडल, क्या भारत की वास्तविकता हो सकती है? ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक, सॉरी स्वर्ण पदक, ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक, क्या भारत की वास्तविकता हो सकती है? मतलब क्या ऐसा भी हो सकता है कि भारत ओलंपिक में 50 स्वर्ण पदक हासिल कर सके? मित्रों अगर हम इसे 2014 का मान, 2014 में ही मोस्ट प्रोबेबली इसे ये पूछा गया था, तो आप देखिए कि 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था, उसके 2 साल बाद ये क्वेश्चन आया, और जो क्वेश्चन आया है वो बड़ा हाइपोथेटिक क्वेश्चन है और ऐसे के रूप में पूछा गया है ना? तो ऐसे में तो फिर अब आप इसको, हाँ आप कह सकते हैं कि ये वास्तविकता हो सकती है, तो आप अपनी बात रखिए, वास्तविकता नहीं भी हो सकती है, एक केवल सपना है, ख्याली पुलाव है, तो आप उस तरह से भी अपनी बात रखने को स्वतंत्र हैं, क्योंकि ऐसे जो लिखा जाता है और जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस के आंसर जो दिए जाते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। यदि इसी क्वेश्चन को जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में पूछ लिया जाता तो आपका उत्तर बिल्कुल डिफरेंट होता। तो ये अंतर तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि जो ऐसे की राइटिंग कैसे होती है और आंसर की राइटिंग कैसे होती है। तो वो ऐसे में पूछा गया था मित्रों, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के ऐसेज अब पूछे जाएंगे, लेकिन मैं जो स्पेशली आपको जो बताना चाहूंगा वो 2014 में जो जनरल स्टडीज का जो सेकेंड पेपर होता है मित्रों, उसमें एक क्वेश्चन खेल पर पूछा गया था और उसका सीधे सीधे संबंध ओलंपिक से ही था। देखिए उन्होंने क्या प्रश्न पूछा था, ध्यान से इसको थोड़ा सा सुनना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें आपको शेड्स को पकड़ने पर विशेष आपका जोर होना चाहिए, आपको शेड्स पहचानने आने चाहिए, रंग से बात नहीं बनेगी, टॉपिक से बात नहीं बनेगा। टॉपिक के लिए तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि इसको या तो आप ओलंपिक का टॉपिक मान लीजिए या इसको स्पोर्ट्स का टॉपिक मान लीजिए, लेकिन सवाल यह है कि चाहे वो ओलंपिक पर क्वेश्चन पूछा जाए या स्पोर्ट्स पर पूछा जाए, पूछा क्या जाएगा, किस रूप में पूछा जा सकता है, ताकि आप अपनी तैयारी को कम से कम थोड़ा सा वो टर्न तो दे सकें। क्योंकि देखिए जब सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके आप जब आंसर लिखेंगे तो आपके पास सोचने के लिए वक्त ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा क्या होगा ही नहीं, हो तो आप क्वेश्चन देखिए और लिखना शुरू कर दीजिए। तो बट नेचुरली कि अगर हमारा दिमाग किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न में ढला हुआ होगा तो हमें लिखने में ज्यादा आसानी होगी, तो मैं उसको पैटर्न में ढालने की ही यहां कोशिश कर रहा हूं, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार अनसॉल्व्ड जो क्वेश्चंस अगर उस टॉपिक पर मिलते हैं तो हम उन्हें देखें और समझने की कोशिश करें। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स कि 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये 12वें नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग मैच कर सकते हैं 2014 में जनरल स्टडीज सेकेंड पेपर में, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहा हूं, ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा, हड़बड़ी में नहीं प्लीज, थोड़ी सी हड़बड़ी को थोड़ा कम कर दीजिए। खिलाड़ी ओलंपिक्स में व्यक्तिगत विजय और देश के गौरव के लिए भाग लेता है, वापसी पर विजेताओं पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा नगद प्रोत्साहनों की बौछार की जाती है, प्रोत्साहन के तौर पर पुरस्कार कार्यविधि के तर्काधार के मुकाबले राज्य प्रायोजित प्रतिभा खोज और उसके पोषण के गुणावगुण पर चर्चा कीजिए। 12.5 नंबर का है, 200 शब्दों में लिखना है, मैं इसके इंग्लिश में पढ़ देता हूं। एन एथलीट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स फॉर पर्सनल ट्रायम्फ एंड नेशंस ग्लोरी, विक्टर्स आर शॉर्ड विथ कैश इंसेंटिव्स बाय वेरियस एजेंसीज ऑन देयर रिटर्न, डिस्कस द मेरिट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टैलेंट हंट एंड इट्स कल्टिवेशन एज अगेंस्ट द रैशनल ऑफ ए रिवार्ड मैकेनिज्म एज इनकरेजमेंट। ये दिया हुआ है मित्रों, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन ओलंपिक पर है, क्वेश्चन स्पोर्ट्स पर है, लेकिन बिल्कुल हटकर है। आपको ये जो हटकर है दोस्तों, ये आपको पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे लिए बहुत आसान था कि भारत में खेलों के प्रोत्साहन के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या कमियां हैं, इनको लेकर के आप तैयारी करें। मित्रों, उससे बात नहीं बनेगी। आपको जो हटकर है उसे देखना होगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो, पता नहीं मैंने वो अभी आप लोगों को प्रोवाइड किया है कि नहीं क्वेश्चन, खासकर बीसीसीआई में जो परिवर्तन करने के लिए, उनके जो सिस्टम में चेंजेस के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, जो निर्देश दिए थे कि आप लागू कीजिए लोढ़ा समिति की रिपोर्ट के आधार पर, तो अब आप देख रहे हैं कि बीसीसीआई अब उसके खिलाफ भी अपना वो जो कुछ भी दायर कर रही है, उसको आधार बना करके मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया था कि जिसका सेंस कुछ ऐसा था, मुझे मैं माफ कीजिएगा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका सेंस कुछ इसी तरह का था कि इससे जो हमारे खेल की दुनिया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने उस बीसी जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उस पर उसके प्रभाव को वहीं तक सीमित न रख करके उसे पूरे खेल जगत तक फैला दिया था। तो वो स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन उसमें जुडिशरी भी आ गया था, प्रोत्साहन भी आ गया था और खेलों में सुधार की बातें भी आ गई थी। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि जो अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछने की परंपरा बिल्कुल खत्म हो गई है। जिनका सच पूछे तो मैं बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी परंपरा शुरू हुई है। इसी में सही मायने में जो रियल टैलेंट होता है उसकी पहचान भी हो पाती है कि आप अपनी तरफ से क्या सोच पा रहे हैं, क्या लिख पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं मित्रों कि जैसे ही साक्षी मलिक ने गोल्ड ब्रॉन्ज मेडल लिया है और पीवी संधू ने सिल्वर मेडल लिया है, तो इसके बाद आप देख रहे हैं बौछार हो रही है ना, कितने स्टेट्स करोड़ों रुपए देने की घोषणा कर रही हैं, कोई लैंड का पीस देने की घोषणा कर रहा है, कोई प्रमोशन देने की बात कर रहा। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है, इनकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जो देश के लिए इतना सब कर रहे हैं तो देश कम से कम उनके लिए तो ये सब करे। अब सवाल ये है मित्रों कि क्या मात्र इसी से खेलों को प्रोत्साहन मिल जाएगा? इतने खिलाड़ी गए थे, उसमें से कितने लोग लेकर आ पाए? कुछ पहलू मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात आप देखें कि भारत में लगभग 67 स्पोर्ट्स फेडरेशन है, 67 स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो मैंने आपको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के तर्ज पर सुधारने की बात कही। तो उसमें कितने इतने फेडरेशन हैं, गवर्नमेंट से उनको सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि अभी पीवी संधु जो मेडल लेकर के आई हैं, वो किसी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन की स्पोर्ट्स लेडी नहीं है। उनको गोपी चंद की जो बैडमिंटन एकेडमी है वो उसने ट्रेंड किया है, और गोपी चंद की जो हमारे यहाँ की बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं और जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप चैंपियन रहे और जिनका वर्ल्ड में फोर्थ रैंक भी रही, उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया है। और उसमें गवर्नमेंट का केवल इतना योगदान है कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उनको एक तरह से लीज पर लैंड प्रोवाइड कर दी है। और आप आश्चर्य करेंगे कि उनके जब उनको एस्टेब्लिश करने के लिए पैसों की जरूरत हुई तो कोई पैसा देने को तैयार नहीं हुआ, उन्होंने अपना जो मकान था वो मॉर्टगेज रखा और तब जाकर के उसको शुरुआत की। बाद में जो उनके एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे उन्होंने उनको 5 करोड़ रुपए दिए तो ये एकेडमी शुरू हुई। और उस एकेडमी को शुरू हुए हार्डली मैं समझता हूं कि 10-12 साल ही हुए हैं और उन्होंने 2 ओलंपिक खिलाड़ी दे दिए जो मेडल लेकर के आए हैं। साइना नेहवाल भी इन्हीं की एकेडमी की खिलाड़ी रही है और उनके कोच भी गोपी चंद खुद रहे हैं। तो वहां भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट लेवल पर काम हो रहा है। अभिनव बिंद्रा जो शूटिंग में गोल्ड मेडल लेकर के आए थे उन्होंने सारी चीजें जो प्राइवेट हासिल की हैं। साक्षी मलिक का आप देख लीजिए। तो जो खिलाड़ी सच में इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उनमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उनके अपने खुद का समर्पण भाव, खुद की मेहनत, वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। तंत्र तो दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो फिर तंत्र कहां है, तंत्र की जरूरत क्या है? तो क्या प्राइवेट लोग ही इसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्या प्राइवेट को फिर आगे आना चाहिए? ये एक सवाल पैदा होता है। और इसके आधार पर आपको अपने निष्कर्ष स्थापित करने होंगे। आप देख रहे हैं, सीधी सी बात है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में कुछ सुधारों की बात कही गई है और उसमें कुछ बड़े मौजूद सुधार है। स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स में यंग लोग आए, यहां तक कि अब तो पॉलिटिक्स तक में यंग लोगों की बात की जाने लगी। आप पार्टी के संगठन में देखिए या मंत्रिमंडल के गठन में देखिए तो वहां यंग लोगों की बात की जाने लगी है। अभी मंत्रिमंडल, खासकर केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में देख लीजिए तो यही हुआ जिसमें रजमा जी को त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो गई थी। तो वहां सब इस तरह की बातें चलने लगी और अगर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए कुछ एज की बात लगा दी गई है, उसमें पॉलिटिशियन न जा को मौका नहीं दिया जाएगा, ब्यूरोक्रेट्स को मौका नहीं दिया जाएगा, तो अब इनका विरोध हो रहा है। तो ये जो विरोध हो रहे हैं, अब आपको देखना यह है कि ये खेल के हित में ये विरोध है या कुछ लोगों के अपने हित में किया जाने वाला विरोध है। क्या यह विरोध सही मायने में खेल का कुछ भला कर पाएगा या कुछ लोग अभी भी इन संस्थाओं पर अपना दबदबा बनाए रखना चाह रही हैं। और चलिए अगर उनका दबदबा बनाया उसको कंटिन्यू भी कर दिया जाए तो उससे फिर खेल का कितना भला होगा, ये सब आपको अपने लेवल पर सोचना पड़ेगा। फिर आप एक और सिनेरियो देख रहे हैं दोस्तों कि भारत में अभी पिछले चार पांच एक साल में देखिए कि खिलाड़ियों पर बायोपिक फिल्म बनने की बाढ़ सी आ गई है। खिलाड़ियों पर सबसे ज्यादा जो बायोपिक फिल्म बन रही है वो खिलाड़ियों पर बन रही है। अभी देख लीजिए कि कुछ ही समय में आपको अजहरुद्दीन पर फिल्म बन चुकी है, मैरी कॉम पर फिल्म बन चुकी है, आपको मिल्खा सिंह पर फिल्म बन चुकी है, धोनी पर फिल्म तैयार होने वाली है, गोपी चंद गुलेला जो अभी एकेडमी की जो मैंने बात की उन पर फिल्म बन रही है, सचिन पर, कितनों पर फिल्म बन रही है। तो ये भी एक, क्या वास्तव में इससे खेल का माहौल बनेगा, क्या लोग प्रेरित होंगे, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या इसकी कोई भूमिका हो सकती है। फिर आप देख रहे हैं कि भारत में कुछ नए खेलों के लीग शुरू हो गए हैं, मतलब क्रिकेट तो अपने आप में भारत का खेल हो ही चुका है और एक तरह से आम खेल बन चुका है, जो कभी अभिजात वर्ग का खेल हुआ करता था अब आम लोगों का खेल हो चुका है। लेकिन दूसरे खेलों के भी अब प्रोत्साहन से लीग शुरू हो गए हैं, भारत में ही फुटबॉल के लीग शुरू हो गए हैं, कबड्डी जैसे खेलों के लीग शुरू हो गए हैं, बैडमिंटन और दूसरे भी शुरू होने जा रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो क्या इससे कोई फायदा होगा। तो मित्रों ये कुछ ऐसे सवाल हैं, मैं केवल सवाल आपकी तरफ उछाल रहा हूं, मैं जवाब इनके नहीं दे रहा हूं, इनके जवाब इतने आसान नहीं है कि मैं अभी आपको तुरंत बता दूं बना बनाया, ये तो आपको अपनी तरफ से ढूंढना होगा अपनी तरफ से। बस मैं जो आप सवाल इसलिए उछाल रहा हूं कि आपकी निगाह इन चीजों पर हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी तरह के टर्न लेकर के पूछे जाएंगे, आपसे स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो मित्रों ये आज जो मैंने आपसे कल के AIR न्यूज को लेकर के कुछ बातें की हैं, न्यूज पर इतना ही। अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर। खासकर दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी जो रियो ओलंपिक को लेकर के एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट लिखा है, आप इसे कमेंट देख सकते हैं, और इसमें इन्होंने यही कहा है कि मतलब इन्होंने तो कहा है कि ये जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है इसको खत्म कर देना चाहिए, खेल मंत्रालय को खत्म ही कर देना चाहिए। फिर उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के उदाहरण भी दिए हैं कि अमेरिका में तो है ही नहीं कुछ ऐसा दिया हुआ है, सब प्राइवेट इंटरप्राइजेज ही पूरे के पूरे खेल को देखते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर कुछ जरूर ऐसा है। फिर ब्रिटेन में इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन वो बहुत थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वो BBC को कंट्रोल करता है, वहां का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, मतलब नहीं के बराबर कंट्रोल है, उनकी स्वायत्तता बनी हुई है। तो उन्होंने दिया है कि क्या भारत को भी इसी तरह से कोई कदम उठाना चाहिए, तो आपको कुछ इसमें बहुत अच्छे एनालिटिकल व्यूज मिल जाएंगे। मित्रों एक क्लिपिंग मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बिजनेस स्टैंडर्ड का, जो सार्वजनिक कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर है। ये भी देखिए जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं कि PPP मॉडल का काफी अभी शोर शराबा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, राजस्थान गवर्नमेंट ने तो हेल्थ के सेक्टर में इसे शुरू कर दिया है, और भी दूसरे सेक्टर्स में भी इसकी डिमांड हो रही है कि सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर कैसे देश को आगे ले जा सकते हैं। सरकार के पास साधन उतने नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के पास धन है, पैसा है, लेकिन सरकार के पास दूसरे बहुत साधन है, उसके पास लैंड है, उसके पास स्टाफ है और उसके पास नेशनल नेटवर्क है जो प्राइवेट वालों के पास नहीं है। तो क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ काम किए जा सकते हैं? तो इसको आप स्पोर्ट्स पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। उसी लिहाज से मैं आपको क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, तो प्लीज आप इस क्लिपिंग्स को जरूर देखिएगा। तो मित्रों, ये न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में आज मैं सोच रहा था कि आप लोगों को जो प्री का जो एग्जाम हुआ है अभी, उसके जनरल स्टडीज के बारे में, उसके पेपर एनालिसिस पर कुछ बात करूं, तो वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है मित्रों, तो इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। अब मैं जो थोड़ा सा वक्त बचा है उस पर आता हूं, लाइफ मैनेजमेंट वाले हिस्से पर। दोस्तों, चूंकि हम खेल की ही बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा आज के लाइफ मैनेजमेंट को खेल को ही समर्पित करूं। और सच पूछे तो ये जो मेरा 5 मिनट का छोटा सा जो आज का लाइफ मैनेजमेंट है, ये एड्रेस है जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको और जो हमारे यंग स्टूडेंट हैं उनको भी। पेरेंट्स को मैं इस रूप में एड्रेस करना चाहूंगा दोस्तों, कि जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए कोशिश करें कि उन्हें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी आउटडोर गेम में जरूर लगाएं। स्पेशली मैं आउटडोर गेम की बात इसलिए कह रहा हूं कि उसमें उनकी फिजिकल फिटनेस भी होती है, लेकिन जो गेम खेल की जो मैं बात कर रहा हूं मित्रों, वो खासकर उनमें एक सहनशीलता का गुण पैदा करने के लिए। देखिए, हम सब में एक किलिंग इंस्टिंक्ट है, मतलब एक जद्दोजहद करने की क्षमता होती है, और सच पूछे तो वो क्षमता बाहर इसलिए नहीं आती क्योंकि उसे मौका ही नहीं मिल पाता, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि हमारे जो आज की पीढ़ी के जो यंग जनरेशन है उनकी सहनशीलता बहुत कमजोर पड़ गई है, पड़ती जा रही है। छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाना, अपना संतुलन खो देना, फिर उसके समस्या के समाधान के लिए गलत रास्ते अख्तियार कर लेना, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनमें वो किलिंग इंस्टिंक्ट नहीं है। थोड़ी सी भी परेशानी हुई घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कोई भी सही या गलत कदम उठा लेते हैं। दूसरी चीज ये भी हो रही कि हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर हो रहा है मित्रों, या कंबाइंड फैमिली खत्म हो रही है, कम होती चली जा रही है, फिर बच्चे भी जो माता पिता के हैं वो एक दो बच्चे हो रहे हैं। तो होता यह था कि जो कंबाइंड फैमिली थी उसमें बच्चे आपस में, कई बच्चे होते थे, आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, खेलते कूदते रहते थे, उनकी आपस में स्पोर्ट चलती रहती थी, तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की उनमें क्षमता होती थी। ये कल्टिवेशन हमको यहीं से करना पड़ेगा, यहीं से कल्टिवेट करना पड़ेगा कि उनमें बर्दाश्त करने की क्षमता हो। जब तक आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, दूसरे के वाक्यों को बर्दाश्त नहीं करने की क्षमता होगी, अपनी आलोचना नहीं सुन सकेंगे, आप डांट नहीं सुन सकेंगे, तो आप सोचेंगे कि बड़े होने के बाद आप समस्याओं को सुलझा सकेंगे, या अपने बॉस को अगर कुछ कहेगा तो सुन के बर्दाश्त कर सकेंगे, या कहीं झगड़ा हो जाएगा तब उसे बर्दाश्त कर सकेंगे, संतुलन बनाए रख करके उसका निराकरण कर सकेंगे। तो मित्रों, वो संभव नहीं है, उसकी ट्रेनिंग यहीं से होती है, और सच पूछिए तो खेल ही वह ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये हो गया है दोस्तों कि अब ये खेल हमारी जिंदगी से गायब होते चले जा रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट देखिए आज के छोटे छोटे हैं, 8-8, 10-10, 12-12 साल के, कंप्यूटर पर खेल रहे हैं। क्या होगा कंप्यूटर पर खेलने पर? दुनिया जाइए, मैदान में जाइए और मैदान में खेलिए, वो जिंदगी को बदलेगा और जिंदगी की सीख वहीं से मिलेगी। तो मित्रों, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी पेरेंट्स से कि आप सब ये बिल्कुल गलत फहमी में न रहें कि बच्चा बाहर खेलने जाएगा तो उतना उसका समय खराब होगा, इतने में तो ज्यादा अच्छा है कि वो कुछ अपनी पढ़ाई ही कर लेता। नो डाउट मैं पढ़ाई के अगेंस्ट में नहीं हूं, वो तो जरूरी ही है, वो जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये भी मान करके चलिए कि सिर्फ पढ़ाई जिंदगी को संपूर्णता तो नहीं दे सकती। नो डाउट वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा, वो बहुत बड़ा आर्थिक आधार देगी, आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा भी सकती है, लेकिन जो जीवन को जीने का जो अंदाज है वो उसमें देने की क्षमता नहीं होती है। आपको बहुत बड़ा मकान दिलवा देगा, गाड़ियां दिलवा देगा, ऊंचे ऊंचे पद दिलवा देगा, लेकिन जो जीवन का रस है वो रस वहां से कहीं ना कहीं गायब आपको दिखाई देगा जब आप ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे। तो मित्रों, जैसे कि किसी शायर ने कहा है कि जिंदगी को जीने के लिए बहुत जरूरी है कि आदमी एक दर्द पाल ले अपने लिए, मुझे लाइनें तो याद नहीं आ रही हैं, अपने लिए आप एक दर्द पाल लीजिए, मुझे लगता है कि जिंदगी को जीने के लिए हम सबको अपने लिए एक एक खेल तो पाल ही लेना चाहिए। तब हम जिंदगी के प्रति जो नजरिया बनता है, जिंदगी के प्रति जो संतुलन पैदा होता है, वो दोस्तों अद्भुत होता है और वही हमारे जिंदगी को एक अलग स्वाद भी देता है। तो यदि मेरे इस डेली ऑडियो के इस हिस्से को यदि पेरेंट्स सुन रहे हों और उनके बच्चे अभी इस एज में हैं कि उनको किसी खेल में लगाया जा सके, तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त खेल में के लिए उन्हें दीजिए। इस बात को भूल जाइए कि वो साक्षी मलिक की तरह मेडल ला पाएंगे कि नहीं, संधू की तरह इंटरनेशनल प्लेयर बन पाएंगे कि नहीं, वो एक अलग बात है। हर कोई केवल प्रोफेशनल ही प्लेयर नहीं बनता है, जिंदगी भी तो एक खेल ही है और उस जिंदगी के खेल को उन्हें इस रियल खेल से समझने का मौका दीजिए। मित्रों, आप सबसे मेरा यही अनुरोध है। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर, जो ईमेल का चरण है। ईमेल लिखने वाले अपने सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं, जो हैं बबलू गोविंद वाले हैदराबाद से, अभिजीत नामदेव पाटिल सांगली महाराष्ट्र से, खुर्शीद अरशद मऊ उत्तर प्रदेश से, पायल प्रजापति मेहसाना से, रामपाल पूंछ जम्मू कश्मीर से, हिमांशु अग्रवाल मथुरा उत्तर प्रदेश से, मनीष नगुलवार, विजय परमार पालिताना गुजरात से, आनंद रावल देहरादून उत्तराखंड से और श्याम जांगीर हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो मित्रों, आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।